अध्याय 12 कनान में अब्राहम। ये अध्याय उत्पत्ति 13 से 15, 17 आयत 1 से 16, 18 पर आधारित है। अब्राहम कनान देश में भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी का धनी होकर लौटा। लूत अभी भी उसके साथ था और वे फिर बेतेल आए और उन्होंने अपने तंबू उसी वेदी के पास खड़े किए जो उन्होंने पहले बनाई थी। जल्द ही उन्हें ज्ञात हुआ कि बढ़ी हुई संपत्ति अपने साथ बढ़ी हुई कठिनाई लाई थी। कठिनाइयों और परीक्षा के बीच वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहते थे, लेकिन समृद्धि की स्थिति में उनमें कलह का खतरा था। चरागाह दोनों के पशु समूह के लिए पर्याप्त नहीं थे और चरवाहों के प्रायः होने वाले आपसी झगड़े सुलझाने के लिए उनके स्वामियों के पास लाए जाते थे। ये स्पष्ट हो चला था कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अब्राहम आयु में लूत से वरिष्ठ था, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखने की योजना प्रस्तावित करने में उसने पहल की। हालांकि स्वयं परमेश्वर द्वारा उसे वो सारा क्षेत्र दिया गया था, लेकिन उसने शिष्टतापूर्वक अपना अधिकार छोड़ दिया। मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच, उसने कहा, झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यहां पर अब्राहम की शिष्टतापूर्ण निःस्वार्थ भावना प्रदर्शित होती है। ऐसी परिस्थितियों में कितने संभावित संकट के बावजूद अपने निजी अधिकारों और पसंद से लिपटे रजेंगे? कितने घराने इस तरह अलग अलग हो गए? कितनी कलीसियाएं सत्य के उद्देश्य को दुष्टों के बीच एक पर्याय और निंदा का विषय बनाते हुए विभाजित हो गई है। अब्राहम ने कहा, मेरे और तेरे बीच कोई झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम केवल प्राकृतिक संबंध द्वारा ही नहीं, वरन सच्चे परमेश्वर के आराध्य होते हुए भाई बंधु है। समस्त संसार में परमेश्वर की संतानें एक परिवार है और उन्हें प्रेम और समझौते की समान भावना के अधीन होना चाहिए। हमारे उद्धारकर्ता की शिक्षा रोमियो 12 आयत 10 में पाई जाती है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक समान शिष्टाचार के विकास से, दूसरों के साथ स्वयं के प्रति जैसा व्यवहार करने की सहमति होने से जीवन की आधी बुराइयां समाप्त हो सकती है। स्वयं की उन्नति की भावना शैतान की भावना है, लेकिन जिस हृदय में मसीह के प्रेम को संजोया जाता है उसमें वो उदारता होती है जो स्वार्थी नहीं होती। ऐसे लोग ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिलिप्पियों 2 आयत 4। हालांकि लूत को अपनी समृद्धि के लिए अब्राहम का आभारी होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने हितकारी के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। शिष्टाचार के नाते उसे चयन का अधिकार अब्राहम के पास ही रहने देना चाहिए था, लेकिन स्वार्थी होकर उसने उसके सारे लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसने आंखें उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब जलपूर्ण थी। सोअर तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। पूरे फिलिस्तीन में यर्दन की तराई सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, जो देखने वालों को गवा दी गई अदन की वाटिका की याद दिलाती थी और हाल ही में छोड़े हुए नील नदी द्वारा उपजाऊ बनाए क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि से बराबरी करती थी। वहां समृद्ध और देखने लायक सुंदर शहर भी थे, जो अपने भीड़ भरे बाजारों में लाभदायक अवैध व्यापार के लिए आकर्षण थे। सांसारिक लाभ की कल्पना से चकाचौंध, लूत ने वहां मिलने वाली नैतिक और आत्मिक बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया। तराई के निवासी यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। या तो इस बात से वो अनजान था, या जानते हुए भी इस बात को उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह उस बुराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। उस स्वार्थ भरे चयन के भयावह परिणामों की उसने कितनी कम पूर्व कल्पना की। लूत से अलग होने के पश्चात अब्राहम को फिर से परमेश्वर द्वारा संपूर्ण राज्य का आश्वासन मिला। इसके तत्पश्चात अब्राहम हेब्रोन में स्थानांतरित हो गया, जहां उसने ममरे के ओक वृक्षों के नीचे अपना तंबू खड़ा किया और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। जहां पहाड़ी तराइयों की खुली हवा थी, जहां जैतून की वृक्ष वाटिकाएं और दाख के बगीचे, झूमते धान के खेत, चारों तरफ की पहाड़ियों के फैले हुए चरागाह थे। वहां अब्राहम जाकर बसा। सदोम की तराई की संकटमय शान और शौकत को लूत के लिए छोड़कर ये कुलपिता अपने साधारण जीवन से संतुष्ट था। अब्राहम को पड़ोसी देशों से एक शक्तिशाली राजकुमार और एक बुद्धिमान व योग्य मुखिया होने का सम्मान प्राप्त था। उसने अपने प्रभाव को अपने पड़ोसियों से परे नहीं रखा। मूर्ति पूजकों के बिल्कुल विपरीत उसके जीवन और चरित्र ने सच्चे विश्वास के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता अविचलित थी। उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार और हितैषिता विश्वास और मैत्री को प्रेरित करती थी और उसकी स्वाभाविक महानता उसे आदर और सम्मान का पात्र बनाती थी। उसके धर्म के बारे में यह मान्यता नहीं थी कि वह कड़े पहरे में संभाल कर रखे जाने वाली अनमोल निधि है या जिसका आनंद केवल उसका स्वामी ही ले सकता है। सच्चा धर्म ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी भावना सुसमाचार के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जब मसीह हृदय में वास करता है तो उसकी उपस्थिति के प्रकाश को छुपा कर रखना असंभव है और ना ही वह प्रकाश फीका पड़ सकता है। इसके विपरीत जैसे जैसे आत्मा पर छाने वाले स्वार्थ और पाप के कोहरे को धार्मिकता के सूरज की प्रकाशमान किरणें दूर करती हैं, वैसे वैसे ये प्रकाश और उज्ज्वल होता जाता है। परमेश्वर के लोग धरती पर उसके प्रतिनिधि हैं और वो चाहता है कि वे इस संसार के नैतिक अंधकार में प्रकाश समान हो। देश भर में, नगरों में, शहरों में और गांवों में फैले हुए वे परमेश्वर के साक्ष्य हैं और वो माध्यम है जिनके द्वारा परमेश्वर अविश्वासी जगत में अपने अनुग्रह के आश्चर्य कर्म और अपनी इच्छा का ज्ञान पहुंचाएगा। ये उसकी योजना है कि महान उद्धार को प्राप्त करने वाले सभी उसके लिए धर्म प्रचारक बने। मसीही की पवित्रता वह मानक स्थापित करती है जिसके आधार पर जगतवासी सुसमाचार को जांचते हैं। धैर्य के साथ सहे संकट, आभार के साथ प्राप्त की हुई आशीषें, दीनता, दयालुता, उदारता और प्रेम का स्वाभाविक प्रदर्शन वह प्रकाश है जो संसार के सामने प्रकाश समान चमकता है और प्राकृतिक हृदय के स्वार्थ के परिणाम स्वरूप आए अंधकार का विपरीत रूप दिखाता है। अपने तीर्थ यात्री जीवन की सरलता में दीन, आज्ञा पालन में स्थिर, उदारता में शिष्ट और विश्वास में समृद्ध, अब्राहम कूटनीति में विवेकपूर्ण और युद्ध में साहसी और दक्ष भी था। ये जानते हुए भी कि वह एक नए धर्म का शिक्षक था, एमोर की तराई जहां वह पहले वास करता था के शासक, राज परिवार से संबंधित तीन भाइयों ने अधिक सुरक्षा के लिए उसे संधि करने हेतु आमंत्रित करने में अपने मैत्री भाव का प्रदर्शन किया। वह देश हिंसा और दमन से ग्रसित था, इसलिए जल्द ही ऐसा अवसर आया कि वह इस संधि का लाभ उठा सके। एलाम के राजा कदोरलाओमेर ने 14 वर्ष पूर्व कनान पर आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन किया था। कई राजकुमारों ने अब विद्रोह किया और 4 संधिबद्धों के साथ एलामी राजा ने कनान को अधिकृत करने के लिए कूच किया। कनान के 5 राजाओं ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और सिद्दीम नामक तराई में घुसपैठियों का सामना किया, लेकिन वे पूरी तरह से पराजित हुए। सेना का बड़ा भाग काट डाला गया और जो बच निकले वे सुरक्षा के लिए पहाड़ों की ओर भाग गए। पराक्रमियों ने तराई के शहरों को लूटा और व्यापक लूट की सामग्री व कई कैदियों, जिनमें लूत और उसका परिवार भी था, सहित प्रस्थान किया। मामरे की ओक की वृक्ष वाटिकाओं में शांति में रहते हुए अब्राहम ने एक शरणार्थी से युद्ध की कथा सुनी और उसके भतीजे लूत पर आई विपत्ति के बारे में जाना। उसने लूत की अकृतज्ञता की किसी भी निर्दयी स्मृति को संजोकर नहीं रखा था। उसका लूत के लिए सारा प्रेम जागृत हो गया और उसने संकल्प लिया कि उसे बचाया जाना चाहिए। सबसे पहले ईश्वरीय परामर्श लेकर अब्राहम ने युद्ध के लिए तैयारी की। अपने जनसमूह से उसने 318 प्रशिक्षित दासों को बुलाया जो अपने स्वामी की सेवा के लिए परमेश्वर के भय में प्रशिक्षित किए गए थे और युद्ध कौशल में निपुण थे। उसके साथ संधिबद्ध मामरे, एशकोल और आनेर अपनी टुकड़ियों सहित जुड़ गए और वे एक साथ घुसपैठियों का पीछा करने निकल पड़े। एलामियों और उनके संधिबद्धों ने अपना डेरा डान में डाला जो कनान की उत्तरी सीमा पर स्थित था। विजय प्राप्ति से आनंद विभोर और हारे हुए शत्रु की ओर से आक्रमण से भय रहित वे मनोरंजन में मग्न हो गए। कुलपिता अब्राहम ने अपने दासों के अलग अलग दल बनाकर रात को उन पर चढ़ाई की। उसका आक्रमण इतना सशक्त और अप्रत्याशित था कि उसे अविलंब विजय प्राप्त हुई। एलाम का राजा मारा गया और उसकी भयग्रस्त सेना को खदेड़ दिया गया। लूत को सहपरिवार, कैदियों व चल संपत्ति के साथ वापस लाया गया और विजेताओं के हाथ बहुत सा लूट का माल लगा। परमेश्वर की अधीनता में अब्राहम की विजय निश्चित थी। यहोवा के उपासक ने न केवल देश के लिए महान सेवा की थी, बल्कि स्वयं को साहसी भी प्रमाणित किया था। यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिकता कायरता नहीं है और अब्राहम के धर्म ने उसे सताए हुए लोगों की रक्षा करने में और अधिकार को कायम रखने में साहसी बनाया था। उसके साहसपूर्ण कृत्य का आसपास के कबीलों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उसकी वापसी पर सदोम का राजा अपने परिजनों सहित विजेता को सम्मानित करने बाहर आया। कैदियों को वापस करने की विनती करते हुए उसने अब्राहम को सारी लूट की संपत्ति ले जाने को कहा। लूट की संपत्ति पराक्रमी का अधिकार होता है, लेकिन अब्राहम का यह अभियान किसी लाभ के लिए नहीं था और उसने अभागों का लाभ उठाने से मना कर दिया। लेकिन उसने तय किया कि उसके संधिबद्धों को वह भाग मिलना चाहिए जिसके वे हकदार थे। ऐसी परीक्षा में बहुत कम स्वयं को अब्राहम की तरह शिष्ट प्रमाणित कर पाते। बहुत कम ने इतनी संपत्ति प्राप्त करने के प्रलोभन में पड़ने से अपने आप को रोका होगा। उसका उदाहरण स्वार्थी धन लोलुप भावनाओं के लिए एक फटकार है। अब्राहम मानवता और न्याय के अधिकार को मान्यता देता था। उसका नैतिक व्यवहार इस प्रेरित नीति वचन का उदाहरण है, एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। लेव्य व्यवस्था 19 आयत 18। उसने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम उन्हें यह सोचने का कोई अवसर नहीं देना चाहता था कि उसने युद्ध लाभ के लिए किया था, और ना ही वह अपनी समृद्धि का श्रेय उनके उपहारों को देना चाहता था। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी और सारी महिमा उसी को देनी चाहिए। दूसरा जो विजयी कुलपिता के स्वागत के लिए बाहर आया, शालेम का राजा मलिकिसिदक था, जो उसकी सेना के जलपान के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आया। परम प्रधान का याजक होने के नाते उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया जिसने उसके विद्रोहियों को उसके वश में कर दिया था, और अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। अब्राहम प्रसन्नचित होकर अपने तंबू और अपने पशु समूह में लौट आया, लेकिन उसका मन कष्टप्रद विचारों से विचलित था। वह एक शांतिप्रिय मनुष्य था जो जहां तक संभव होता था शत्रुता और कलह से दूर रहता था, और भयभीत होकर उसने नरसंहार के दृश्य का स्मरण किया जिसका वह स्वयं साक्षी था। लेकिन वे देश जिनकी सेनाओं को उसने पराजित किया था, कनान पर निश्चय ही आक्रमण को सक्रिय कर उसे अपने बदले का विशेष लक्ष्य बनाते। इस प्रकार के राष्ट्रीय झगड़ों में उलझकर उसके जीवन की शांति भंग होने का डर था, और तो और अभी उसे कनान का स्वामित्व नहीं मिला था और न ही वह उत्तराधिकारी की आशा कर सकता था जिसमें प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो सकती थी।
रात के एक स्वप्नदर्शन में ये अलौकिक वाणी सुनाई थी, हे अब्राहम मत डर। ये बोल राजाओं के राजा के थे, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। लेकिन उसका मन आने वाले संकट के पूर्वाभास से इतना परेशान था कि वो पहले वाले निस्संदेह विश्वास के साथ प्रतिज्ञा को नहीं समझ पाया। उसने उसके परिपूर्ण होने के स्पष्ट प्रमाण के लिए प्रार्थना की, और वाचा की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होनी थी जब वो पुत्र की आशीष से वंचित था। उसने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उसने गोद लेकर अपने विश्वसनीय दास एलियाजार को अपना पुत्र व अपनी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसे आश्वासन दिया गया कि उसका जो निज पुत्र होगा वही उसका वारिस होगा। फिर उसे तंबू से बाहर ले जाया गया और उसे कहा गया कि आकाश में चमकते हुए असंख्य तारों की ओर दृष्टि करे, और जब उसने ऐसा किया तो ये शब्द बोले गए, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3। अभी भी कुलपिता ने एक दृश्य चिन्ह की विनती की जिससे उसके विश्वास का पुष्टिकरण हो सके और आने वाली पीढ़ियों को ये प्रमाण मिल सके कि उनके लिए परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजनाओं का परिपूर्ण होना निश्चित है। विधिवत कार्य के पुष्टिकरण हेतु मनुष्यों में परंपरागत तरीके को अपनाते हुए परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधना स्वीकार किया। ईश्वरीय निर्देशन में अब्राहम ने 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेरहा, एक पिंडुक और एक कबूतर के बच्चे की बलि चढ़ाई। इन सभी को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। ऐसा करने के पश्चात वो श्रद्धापूर्वक बलि के अंशों के बीच से निकला और परमेश्वर के प्रति अखंडित आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा की। सतर्क और अटल वो सूर्यास्त तक उन टुकड़ों के पास रहा ताकि वो उन्हें मांसाहारी पक्षियों द्वारा खाए जाने से या अशुद्ध करने से सुरक्षित रख सके। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को गहरी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया, और परमेश्वर की वाणी सुनाई दी जो उसे कह रही थी कि वो प्रतिज्ञा के देश के तत्काल स्वामित्व की अपेक्षा न करे और उसके वंशजों पर कनान में स्थापित होने से पूर्व आने वाली आपदाओं का संकेत दिया। मसीह की मृत्यु में, महान बलिदान में, उसकी महिमा के साथ आगमन में, उद्धार की योजना से उसे अवगत कराया गया। अब्राहम ने यह भी देखा कि प्रतिज्ञा के अंतिम और संपूर्ण परिपूर्णता के तौर पर अनंत संपत्ति के रूप में अदन की सुंदरता में पुनः निर्मित धरती उसे दी जाएगी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाचा की शपथ जैसे एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल, ईश्वर की उपस्थिति के चिन्ह, उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकली और उन टुकड़ों को भस्म कर दिया, और अब्राहम को फिर से एक आवाज सुनाई दी जिसने उसके वंशजों के लिए कनान देश के उपहार की पुष्टि की। मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश। जब अब्राहम कनान में लगभग 25 वर्ष व्यतीत कर चुका था तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। श्रद्धायुक्त विस्मय से कुलपिता अपने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता रहा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इस वाचा के परिपूर्ण होने के चिन्ह स्वरूप उसका नाम अब्राम से अब्राहम हो गया, जिसका मतलब है जातियों के समूह का मूल पिता सारे का नाम सारा हो गया, राजकुमारी, क्योंकि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इस समय जो विश्वास उसने बिना खतने की दशा में दर्शाया था उसके परिणाम स्वरूप धार्मिकता पर छाप के रूप में अब्राहम को खतने की विधि दी गई। कुलपिता व उसके वंशजों को चिन्ह के रूप में इसका पालन करना था, ये बताने के लिए कि वे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हैं और इस तरह मूर्ति पूजा करने वालों से अलग किए गए हैं, और परमेश्वर ने उन्हें उसकी अनमोल निधि के रूप में स्वीकार किया है। इस विधि के माध्यम से वे अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा के प्रतिबंधों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध थे। उनको अन्य जातियों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाने थे। ऐसा करने से वे परमेश्वर और उसकी व्यवस्था का निरादर करते। वे अन्य देशों के पापमय अभ्यास में भागीदार होने को प्रलोभित होते और मूर्ति पूजा में पड़ जाते। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सम्मान दिया। स्वर्गदूत मित्रों जैसे उससे बातचीत करते और उसके साथ चलते थे। सदोम पर आने वाली दंडाज्ञा का तथ्य उससे छुपा नहीं था और वो पापियों और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बना। स्वर्गदूतों का उसके साथ साक्षात्कार अतिथि सत्कार का उत्तम उदाहरण है। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर में कुलपिता अपने तंबू के द्वार पर बैठे शांत स्थल प्रकृति को देख रहा था जब उसने तीन यात्रियों को दूर से आते हुए देखा। उसके तंबू तक पहुंचने से पूर्व वे ठहरे जैसे रास्ते के संबंध में परामर्श कर रहे हों। उनके सहायता मांगने से पहले ही अब्राहम जल्दी से उठा और जब वे संभवतः दूसरी दिशा में मुड़ रहे थे वो उनके पीछे गया और शिष्टतापूर्वक उनसे विनती की कि वे जलपान के लिए रुककर उसका सम्मान करें। वो स्वयं जल लेकर आया कि वे अपने पैरों पर लगी यात्रा की धूल को धो सकें। उनके खाने का उसने स्वयं चयन किया और जब वे ठंडी छाया में विश्राम कर रहे थे उसने उनके मनोरंजन का प्रबंधन किया गया और वो आदर भाव के साथ तब तक उनके पास खड़ा रहा जब तक वे उसके अतिथि सत्कार को ग्रहण करते रहे। शिष्टाचार का ये कृत्य इतना महत्वपूर्ण है कि एक प्रेरित अनुयायी ने हजार वर्ष पश्चात इसके संदर्भ में कहा, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। इब्रानियों 13:2। अब्राहम ने अपने अतिथियों में केवल तीन थके हुए यात्रियों को देखा बिना सोचे कि उनमें से एक है जो निष्पाप है और वो उसकी आराधना करेगा। लेकिन स्वर्ग के दूतों का वास्तविक चरित्र अब स्पष्ट हुआ। हालांकि वे क्रोध के वाहकों के रूप में अपनी राह पर थे लेकिन विश्वास के पिता अब्राहम के साथ उन्होंने पहले आशीषों की बात कही। हालांकि परमेश्वर दुष्टता की सुधि लेने में और पापियों को दंडित करने में कठोर है लेकिन उसे प्रतिशोध में आनंद नहीं आता। विनाश का कार्य उसके लिए विचित्र है जो प्रेम में असीमित है। भजन संहिता 25:14 में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ विचार विनिमय करते हुए अपने उद्देश्यों को उसे बताते हुए अब्राहम को सम्मानित किया। यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और इनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंचती है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर को भली भांति सदोम के अपराध बोध का अनुमान था लेकिन उसने स्वयं को उसी तरह व्यक्त किया जैसे कि मनुष्य करते हैं ताकि उसके व्यवहार में न्याय को समझा जा सके। वो स्वयं नीचे उतरेगा और उनके क्रियाकलापों को जांच कर ये निर्धारित करेगा कि उन्होंने ईश्वरीय दया की सीमा तो पार नहीं की और ऐसा होने पर उन्हें पश्चाताप का मौका देगा। उनमें से स्वर्ग के दो संदेशवाहक चले गए और अब्राहम को उसके साथ छोड़ गए जिसे वो अब परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचानता था। और विश्वास के पिता ने सदोम वासियों के लिए विनती की। एक बार उसने उन्हें अपनी तलवार से बचाया था और अब वो उन्हें प्रार्थना के द्वारा बचाने का प्रयत्न कर रहा था। लूत और उसका घराना अभी भी वहां रह रहा था और जिस निस्वार्थ प्रेम ने अब्राहम को उन्हें एलामियों से बचाने को प्रेरित किया था उसी प्रेम ने अब यदि परमेश्वर की इच्छा थी तो पवित्र दंडाज्ञा से बचाना चाहा। अत्यंत आदर और दीनता के साथ उसने आग्रह किया, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो अभी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। इसमें ना तो आत्मविश्वास था और ना ही अपने धर्मी होने की बढ़ाई करना। परमेश्वर की इच्छानुसार अपने द्वारा दी गई बलि की भेंटों या अपनी आज्ञाकारिता को उसने परमेश्वर से अति कृपा पाने का आधार नहीं बनाया। स्वयं को पापी मानते हुए उसने दूसरे पापियों की ओर से विनती की। ऐसी ही भावना उन सब में होनी चाहिए जो परमेश्वर से आग्रह करते हैं। अब्राहम ने ऐसा विश्वास प्रकट किया जैसा कि एक बच्चा अपने प्रिय पिता से विनती करने में दिखाता है। वो स्वर्ग से आए संदेशवाहक के निकट आया और आग्रहपूर्वक याचना की। हालांकि लूत सदोम का वासी हो गया था लेकिन उसने वहां के निवासियों की दुष्टता का अंगीकार नहीं किया था। अब्राहम ने सोचा कि उस जनपूर्ण शहर में सच्चे परमेश्वर के और भी उपासक होंगे। इस दृष्टिकोण से उसने विनती की, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय न करे?
अब्राहम ने एक नहीं अनेकों बार पूछा। निवेदन स्वीकार होने पर उसका साहस बढ़ता गया और वो तब तक विनती करता रहा जब तक उसे ये आश्वासन नहीं मिला कि यदि उस शहर में 10 धर्मी मनुष्य भी मिले तो उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। अब्राहम की प्रार्थना मरती हुई आत्माओं के लिए प्रेम से प्रेरित हुई। वो उस भ्रष्ट शहर के पापों से तो घृणा करता था, लेकिन पापियों को बचाना चाहता था। सदोम के प्रति उसकी गहरी संवेदना प्रतीक है उस चिंता भरी उत्सुकता का, जिसका आभास हमें पश्चातापहीन लोगों के प्रति होना चाहिए। हमें पाप से घृणा, लेकिन पापी के प्रति प्रेम और दया दिखानी चाहिए। हमारे चारों ओर आत्माएं उस विनाश की ओर जा रही हैं जो सदोम के विनाश जैसा आशाहीन और भयानक है। हर दिन किसी न किसी की परख अवधि समाप्त हो रही है। हर घंटे कोई न कोई ईश्वर की दया की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और कहां है वे चेतावनी और निवेदन भरी आवाजें जो पापियों को इस भयावह विनाश से दूर भाग जाने को कहें? कहां है वे फैलाए हुए हाथ जो इन्हें भयानक मृत्यु से पीछे खींच सकें? कहां है वो दीनता और दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर से विनती कर रहे हैं? अब्राहम की भावना मसीह की भावना थी। स्वयं परमेश्वर का पुत्र पापी की ओर से महान अधिवक्ता है। वो जिसने पापी के उद्धार की कीमत चुकाई है, मनुष्य के मोल को जान सकता है। बुराई के प्रति असीम घृणा करते हुए, जो एक बेदाद पवित्र स्वभाव ही कर सकता है, मसीह ने पापी के प्रति उस प्रेम की अभिव्यक्ति की जो केवल अपरिमित अच्छाई ही उत्पन्न कर सकती है। क्रूस पर चढ़ाए जाने की यातनाओं के बीच समस्त संसार के पापों का बोझ ढोते हुए भी उसने उसके हत्यारों और ठट्ठा करने वालों के लिए प्रार्थना की है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। लूका 23:34। अब्राहम के संदर्भ में लिखा गया है कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया और उन सब का पिता ठहरा जो विश्वास करते हैं। याकूब 2:23, रोमियो 4:11। इस निष्ठावान कुलपिता के लिए परमेश्वर की गवाही है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसकी और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया है, और मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। जिन लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा के मसीह के आगमन संबंधित सर्व जगतवासियों को आशीष मिलनी थी, जो सदियों तक जगत के लिए परमेश्वर के सत्य के संरक्षक और अभिभावक रहे, उनका पिता कहलाने के लिए बुलाया जाना अब्राहम के लिए उत्कृष्ट सम्मान था। जिसने कुलपिता के लिए बुलाहट भेजी, उसने उसे इस योग्य पाया। वो परमेश्वर है जो बोलता है, जो बहुत दूर तक के विचारों को भांप लेता है और मनुष्य पर सही अनुमान लगाता है। वो कहता है, मैं इसे जानता हूं। अब्राहम स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के लिए सत्य को झुठलाने वालों में से नहीं था। वो व्यवस्था और समझौते का न्यायपूर्वकता और सत्यपरायणता सहित पालन करने वाला था। स्वयं परमेश्वर का भय मानने के साथ साथ वो अपने घर परिवार में धर्म को बढ़ावा देता था। वो अपने परिवार को सिद्धता की शिक्षा देता। परमेश्वर की व्यवस्था उसके घराने का नियम होता था। अब्राहम के घराने में 1000 से भी अधिक प्राणी थे, जो उसके नेतृत्व में परम प्रधान परमेश्वर की उपासना करने लगे थे। उन्हें उसके डेरे में घर मिला और यहां उन्हें सच्चे विश्वास के प्रतिनिधि के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उसी प्रकार मिली जैसे कि किसी पाठशाला में मिलती है। इस तरह उस पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। वो परिवार के मुखियाओं को प्रशिक्षित कर रहा था और जिन घरानों का वे संचालन कर रहे थे उन घरानों में अब्राहम के निर्धारित किए नियमों का पालन होना था। प्राचीन काल में पिता अपने संपूर्ण परिवार का मुखिया और धर्माध्यक्ष होता था, और उसका अपनी संतान पर तब भी अधिकार होता था जब वे खुद परिवार वाले हो जाते थे। उसके वंशजों को उसे मुखिया मानने की शिक्षा दी गई। अब्राहम इस पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था को स्थायी बनाना चाहता था, क्योंकि ये परमेश्वर के ज्ञान को संरक्षित रखने में सहायक होती। मूर्ति पूजा इतनी व्यापक और गंभीरस्थ हो गई थी
कि उस पर रोक लगाने हेतु परिवार के सदस्यों में एका बनाए रखना अनिवार्य था। अब्राहम ने अपनी क्षमतानुसार छावनी के सहवासियों को अधर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ाने से और उनकी मूर्ति पूजक परंपराओं के दर्शक होने से बचाए रखने के हर साधन द्वारा प्रयत्न किया, क्योंकि वो जानता था कि बुराई से अंतरंगता सिद्धांतों को अलक्ष्य रूप से भ्रष्ट कर सकती थी। हर प्रकार के कृत्रिम धर्म को बाहर रखने का बहुत ध्यान रखा गया और आराधना योग्य जीवित परमेश्वर के वैभव और महिमा से मन को प्रभावित करने के प्रयत्न किए गए। ये परमेश्वर द्वारा स्वयं किया गया ज्ञानपूर्ण प्रबंध था कि जहां तक संभव हो उसके लोगों को अन्य जातियों के संपर्क से अलग रखा जाए और अन्य देशों में सम्मिलित न करके उन्हें एक पृथक संप्रदाय बनाया जाए। उसने अब्राहम को उसके मूर्ति पूजक परिजनों से अलग किया था ताकि मेसोपोटामिया के लुभावने प्रभाव से परे कुलपिता अपने परिवार को शिक्षित और प्रशिक्षित कर सके और आने वाली हर पीढ़ी के वंशजों द्वारा सच्चे विश्वास की पवित्रता संरक्षित रहे। अपनी संतानों और घराने के प्रति प्रेम ने अब्राहम को उनके धर्म संबंधी विश्वास की सुरक्षा करने, उन्हें और उनके द्वारा पूरे जगत को उसकी सबसे महत्वपूर्ण मीरास के रूप में पवित्र नियमों की शिक्षा प्रदान करने को प्रेरित किया। सबको यह शिक्षा दी गई कि वे अलौकिक परमेश्वर के नियमाधीन थे। अभिभावकों की ओर से दमन और बच्चों की ओर से अवज्ञा का कोई स्थान नहीं था। परमेश्वर की व्यवस्था ने सभी के कार्य निर्धारित किए थे और उसी का पालन करने से उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती थी। अब्राहम का निजी उदाहरण उसके दैनिक जीवन का निःशब्द प्रभाव एक स्थायी सबक था। वह अटल सत्यनिष्ठा, वह उदारता और निस्वार्थ कृतज्ञता जिन्हें राजाओं ने भी सराहा, उसके घर में दिखती थी। उस जीवन में एक सुगंध थी, चरित्र में भद्रता और माधुर्य था जो उसके स्वर्ग से जुड़े होने को प्रमाणित करता था। उसने सबसे निम्न दास की आत्मा की भी उपेक्षा नहीं की। उसके घराने में स्वामी और दास के लिए अलग अलग नियम नहीं थे और न ही धनवान और निर्धनों के प्रति व्यवहार में अंतर था। सभी के साथ जीवन के अनुग्रह के उत्तराधिकारी समान न्यायपूर्ण और करुणामय व्यवहार किया जाता था। वो अपने घराने का संचालन करेगा, बच्चों की पापमय प्रवृत्ति पर रोक न लगाने की अधर्मी उपेक्षा का, निर्बल विवेकहीन क्षमाशील पक्षपात का, गलत समझे हुए प्रेम के आगे कर्तव्य परायणता के परित्याग का कोई स्थान नहीं था। अब्राहम को न केवल सही निर्देश देने थे वरन न्याय संगत और पवित्र नियमों की मान्यता को भी बनाए रखना था।
हमारे समय में कितने कम हैं ऐसे लोग जो इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। कोई अभिभावक एक अंधा स्वार्थपूर्ण संवेदनशील कृत्रिम प्रेम दिखाते हुए अपने बच्चों को उनके अविकसित विवेक के अनुशासनहीन आवेग के साथ मनमर्जी करने को छोड़ देते हैं। ये नौजवानों पर किया हुआ घोर अत्याचार है और जगत के लिए अपराध। अभिभावकों के अनुचित दुलार से परिवारों और समाज में अव्यवस्था पनपती है। ईश्वरीय अपेक्षाओं के प्रति समर्पित होने के बजाय बच्चों में स्वयं की रुचियों को तृप्त करने की अभिलाषा घर कर लेती है। इस कारण वे ऐसे हृदय के साथ बड़े होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करता है, और उनकी ये अधर्मी असमर्पित भावना अपनी संतानों और संतानों की संतानों में भी पहुंच जाती है। अब्राहम के समान अभिभावकों को अपने घरानों का संचालन स्वयं करना चाहिए। परमेश्वर के प्रभुत्व के प्रति आज्ञाकारिता में पहले चरण के रूप में पैतृक अधिकार की मान्यता देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्माध्यक्षों द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था की अपर्याप्त मान्यता देने के कारण कई बुराइयां उत्पन्न हुईं। उनकी शिक्षा जो इतनी व्यापक हो गई है कि मनुष्य पवित्र नियमबद्ध ना रहा, उस शिक्षा का मनुष्य की नैतिकता पर मूर्ति पूजा जैसा प्रभाव पड़ता है। जो प्रयत्न करते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से राज्यों और परिवारों की शासन प्रणाली की नींव पर चोट करते हैं। धर्म प्रधान अभिभावक यदि परमेश्वर के नियमानुसार नहीं चलते हैं तो वे अपने घराने को परमेश्वर के बताए पथ पर नहीं चला सकते। जब संतानें स्वयं अपने परिवार स्थापित करते हैं तो वे अपने बच्चों को वो सिखाने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं समझते जो उन्हें कभी नहीं सिखाया गया। इसी कारण कई परिवार ईश्वर रहित हैं। इसी कारण दुष्टता इतनी व्यापक और अति है। जब तक अभिभावक स्वयं शुद्ध हृदय से परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं चलते, वे अपनी संतानों को व्यवस्था मानने को बाध्य नहीं कर सकते।
इस संदर्भ में गंभीर और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अभिभावकों में सुधार की आवश्यकता है, धर्माध्यक्षों में सुधार की आवश्यकता है, उनके घराने को परमेश्वर की आवश्यकता है। अगर उन्हें परिस्थिति में कुछ अलग प्रतीत होता है तो उन्हें अपने परिवारों में परमेश्वर के वचन को लाना चाहिए और उसे अपना सलाहकार बनाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि यह परमेश्वर की वाणी है और उन्हें इसका कहां मानना चाहिए। उन्हें धैर्य के साथ उन्हें निर्देश देने चाहिए और नम्रतापूर्वक व बिना थके उन्हें सिखाना चाहिए कि वे किस तरह अपना जीवन व्यतीत करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। ऐसे घरानों के बीच मूर्ति पूजा के कुतर्क का उत्तर देने को तैयार होते हैं। उन्हें बाइबल को अपने विश्वास का आधार माना होता है और उनकी नींव संदेहवाद के प्रवाह में नहीं बह सकती। कई घरों में प्रार्थना की उपेक्षा होती है। माता पिता को लगता है कि उनके पास सुबह शाम की प्रार्थना के लिए समय नहीं है। परमेश्वर की बहुतायत से दी हुई कृपा, वर्षा की बौछार और सूर्य की रोशनी जो वनस्पति को पनपाती है, वह पवित्र स्वर्गदूतों द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल सकता। अपने घराने में मसीह की स्थायी उपस्थिति और ईश्वरीय सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना का समय भी नहीं होता। बिना स्वर्ग या परमेश्वर का विचार किए वे बैल या घोड़े की तरह अपने अपने कार्यों के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी आत्माएं इतनी मूल्यवान हैं कि उनका सर्वनाश होने के बजाय परमेश्वर के पुत्र ने उन्हें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन वे उसकी अति अच्छाई की सराहना मरते हुए पशुओं से कुछ ही ज्यादा करते हैं। प्राचीन कुल पिताओं की भांति जो भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हें जहां वे अपना तंबू खड़ा करते हैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी चाहिए। यदि ऐसा कभी भी ऐसा समय था कि प्रत्येक घर प्रार्थना का घर होना चाहिए तो वह समय अभी है। माता और पिता को अपने बच्चों के लिए दीनता भरी विनती में अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। पिता को घराने का धर्माध्यक्ष होने के नाते सुबह शाम परमेश्वर की वेदी पर बलि की भेंट चढ़ानी चाहिए और माता और बच्चों को प्रार्थना और स्तुति में एक होना चाहिए। ऐसे घरानों में मसीह को देर तक रहने में आनंद आता है।
हर मसीही घराने में से एक पवित्र प्रकाश प्रवाहित होना चाहिए। प्रेम की अभिव्यक्ति कार्य में होनी चाहिए। स्वयं को संवेदनशील, दयालुता व नम्र, निस्वार्थ कृतज्ञता में प्रकट करते हुए ये प्रेम घर के पारस्परिक व्यवहार में प्रवाहित होना चाहिए। ऐसे घर है जहां इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, जहां परमेश्वर की आराधना होती है और जहां प्रेम प्रभावशाली होता है। इन घरों से अगरबत्ती के धुएं रूपी सुबह शाम की प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और सुबह की ओस रूपी कृपा और आशीष विनती करने वालों पर नीचे आती है। एक सुव्यवस्थित मसीही घराना मसीही धर्म की वास्तविकता के पक्ष में एक प्रभावशाली तर्क है जिसका मूर्ति पूजक भी खंडन नहीं कर सकते। सबको ज्ञात होता है कि परिवार में एक शक्ति होती है जो दूसरों पर प्रभाव डालती है, और यह कि अब्राहम का परमेश्वर उनके साथ है। यदि तथाकथित मसीही लोगों के घरों का आचरण धर्म प्रधान होता तो वे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते। वे वास्तव में जगत की ज्योति होते। अब्राहम को संबोधित किए शब्दों द्वारा परमेश्वर हर विश्वसनीय अभिभावक से बात करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें।